ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। भक्त्या विहीनाय पराधलक्षै चित्तस्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयीं त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रीति तन्मेतया तर्वोऽभिनेतु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमा। श्रीमद् भागवत प्रारंभ के पहले गुरु वंदना का नियम है, इसलिए सुत गोस्वामी जी अपने गुरु को प्रणाम कर रहे हैं। उनके गुरु सुखदेव गोस्वामी हैं। जन्म हुआ और जात संस्कार कार्य भी नहीं हुआ, न स्नान कराया गया, न कुछ हुआ, न कोई भी कुछ संस्कार नहीं हुए और घर से निकल पड़े और भागे और पीछे से उनके पिताजी हा पुत्र कह करके पीछे से दौड़ रहे हैं। सब समय चिंता करते हैं। वो जगत गुरु सुखदेव गोस्वामी को मैं प्रणाम कर रहा हूँ। सुत गोस्वामी जी कह रहे हैं, मैं सबसे पहले सुखदेव गोस्वामी को भी प्रणाम करने के पहले, कृष्ण को भी प्रणाम करने से पहले, मैं अपने नित्य लीला ओम प्रविष्ट अष्टोत्तर सश्मद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी को उनके श्री चरण कमलों में कोटि कोटि बार दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। ये हमारे केशव जी गुरु जी हमारे जी हैं। ये कौन है? ये जगत में सर्वत्र जिन्होंने नाम संकीर्तन का प्रचार किया है, भक्ति का कुछ थोड़ा सा जो दिख रहा है जगत में आज, वो जो भक्ति वेदांत स्वामी जी जो प्रभुपाद के नाम से आजकल भी प्रख्यात हैं, उनको ये संन्यास देने वाले हैं जो हमारे गुरु जी हैं। हम लोग अपने गुरु जी के पहले संन्यासी शिष्य हैं। हमारा नाम भी भक्ति वेदांत नारायण लोग कहते हैं। हमारे करीब करीब 5-7 वर्ष बाद 1959 में स्वामी जी मथुरा में आए। उस समय एक पैसा एक कौड़ी भी उनके साथ में नहीं था। हमारे गुरु जी के परम मित्र थे। हमारे गुरु जी सन्यासी थे और ये गृहस्थ भक्त थे। प्रभुपाद ने 1922 या 23 में इनको हरिनाम दिया था और जगत में प्रचार करने के लिए कहा था स्वामी जी को, भक्ति वेदांत अभय चरण जी को। इसके बाद में कुछ परिस्थितियां आई ऐसी जिसमें जिस काम में हाथ डालते बस वही काम असफल हो जाता। धीरे धीरे पथ के भिखारी हो गए। ये हमसे कह रहे थे जब मथुरा में आए 1954-55 में, तो हमसे बोले जैसे मैं डर रहा था। जो भगवान का जो भजन करता है कृष्ण का, आत्यंतिक रूप से उसको कृष्ण पथ का भिखारी कर देते हैं और फिर उसको जगत का गुरु बना देते हैं। तो मैं डर रहा था जी भगवान का भजन करने के लिए हमारे गुरुजी ने हमको मंत्र दिया और मैं कहीं पद का अधिकारी ना हो जाऊं। बंगाल के मिलन के वो मैनेजर थे, बहुत विद्वान आदमी थे, बहुत योग्य आदमी थे, अनुभवी थे, रिसर्च स्कॉलर थे, किंतु कुछ दिनों के बाद ही में हरिनाम दीक्षा लेने के बाद ही में वो छूट गया का। इलाहाबाद में आए, उन्होंने वहां पर भी एक फॉर्म किया, वहां पर भी औषधें बनने लगी, किंतु वो भी फेल हो गया। फिर उसके बाद में दुकान की, वो भी फेल हो गया। घर वालों ने देखा जैसे ये तो अब निष्ठल्य हो गए, कुछ काम नहीं, घर से कहा जैसे अब आपको घर में नहीं रहना है। उनकी स्त्री और लड़कों ने भी कह दिया अब घर में मत आना, बिना पैसे कौड़ी के मथुरा में आए। हमने कहा जी आप इतने योग्य व्यक्ति और आप अभी तक ऐसे ही हैं, जल्दी से संन्यास लेकर के विश्व में प्रचार कीजिए, अपने गुरु का आप में इतनी सामर्थ है। कहा जी यही तो बात है, यही तो मैं डर रहा था और यही चीज हमारे ऊपर में आई और इतने हमारे गुरु जी आए। गुरु जी से भी मैंने कहा जिसे इनसे कहिए ये संन्यास लेकर के विश्व में प्रचार करें। बस गुरु जी की ये बड़ी बात मानते थे। हमारे गुरु जी 1916 में हरिनाम दीक्षा ली प्रभुपाद जी से, इसलिए इनके बड़े भाई होने के नाते और सन्यासी होने के नाते इनकी बात मान गए और मथुरा में ही इन्होंने सन्यास दिया हमारे गुरु जी ने इनको, और तब ये प्रचार किया। मैं उसमें पुरोहित्य किया, उनको सन्यास कैसे पढ़ना लिया जाता है, कैसे कपड़े बांधे जाते हैं, कैसे किया जाता है, ये सब बातें उनको हमने उसमें बतलाई। हमारे गुरु हैं, हमारे शिक्षा गुरु जी हैं ये, किंतु तभी से इनकी मैं सेवा करना आरंभ किया। वहीं पर उन्होंने भागवत का ट्रांसलेशन आरंभ किया जो 3 खंडों में छपा सबसे पहले, उन्होंने सबसे पहला वो हमको दिया। इसके बाद में फिर वो राधा दामोदर में आए वृंदावन में, फिर वहां से विश्व में प्रचार करना आरंभ किया। उन्होंने हमको कम से कम तो 250-300 पत्र दिए, जो जो कम होता था वो हमको देते थे। इसके बाद में अंत में हमको बुलाया, जब यहां से प्रचार करके जब पहली बार लौटे तो मैं ही केवल एक व्यक्ति था जो उनको रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट में गया, उनके साथ में रह करके उनको रसोई बना करके खिला देता, चपाती बनाता था वो बेलते और मैं चपाती बना करके ठाकुर जी को भोग दे करके खाता और उनको भी खिलाता। तब से आज से करीब करीब 52 वर्षों से हमारा उनका संपर्क है। आज का नहीं, उस समय इस्कॉन का जन्म ही नहीं हुआ था, इस्कॉन में सन्यासियों की तो बात किया। और अंत में हमको बुलाकर, संक्षेप में बतला रहा हूं, अंत में हमको बुलाया और बुला करके कहा जिस दिन जाने वाले हैं, जगत को छोड़ने वाले हैं, उस दिन हमको बुलाया। बोले से देखिए आपसे हमारा एक निवेदन है, हमारे हाथों को अपने हाथों में लेकर के रोने लगे, हमको अपने बिस्तरे पर बैठाना चाहा। मैं उनके चरणों को प्रणाम करके उनके सिरहाने एक कुर्सी सब लोग लाया, उस पर मैं बैठ गया, बात होने लगी, बहुत दिल खोल करके बात कही। हमने कुछ प्रचार में कुछ गलतियां की होंगी, इसके लिए आपसे क्षमा मांगता हूं और हमारे गुरु भाइयों से कह देना जैसे वो क्षमा करेंगे हमें यदि कुछ बात हो गई, और अपने हाथों से आप मेरी समाधि देंगे, दूसरा कोई उसमें हाथ न लगाए। समाधि जानते हैं ना अंत में होती है। मैंने कहा जी ठीक है, आप जो कहेंगे आपकी मैं सेवा करूंगा, और हमारा विरह उत्सव जो होगा आप उसका लीड करेंगे, सब कराएंगे, हमारा नगर संकीर्तन होगा उसमें रहेंगे, जिसको जिसको जो पैसा लेना देना होगा आप सब लोगों को उचित समझ करके दिलवाएंगे। और सबसे अंतिम हमारी ये प्रार्थना है कि हमारे जो अभी जिनको अभी प्रचार से ले आया हूं पाश्चात्य देशों से, उनको मैं पूरी शिक्षा नहीं दे सका, आप उनको शिक्षा भी देंगे, आप उनको सहायता करेंगे अपने से। मैंने कहा जी जरूर मरते समय तक मैं आपके आदेशों को पालन करूंगा, आप मेरे गुरु हैं। मैंने ये सब काम किया, ये सब उसका मैं तो रिकॉर्ड रखना नहीं चाहता, जानता हूं, किंतु उस समय में जो लोगों ने कैसेट लिए और क्या वीडियो लिया वो सब अभी जैसे के तैसे है। जीवन भर मैंने उनकी सेवा की, अभी भी उनकी जहां जाता हूं उनकी महिमा का व्याख्यान करता हूं। वो आज नहीं होते तो इतने थोड़े समय में ही विश्व में भारत की संस्कृति का ये जो भक्ति का प्रचार है, भगवान का नाम का प्रचार नहीं होता है। ये कोई भगवान की विशेष शक्ति के द्वारा होता है। इसलिए उन्होंने जगत में थोड़े दिनों में ही आए और कितने ग्रंथ लिखे, अनुवाद किया भागवत का, चैतन्य चरितामृत का, ऑथेंटिक बुक्स का, गीता का, जो आज जगत में सर्वत्र लोग पढ़ करके इस लाइन में आते। नहीं तो किसी को पता ही नहीं था जैसे ये गीता नाम का क्या चीज है, भगवान का नाम संकीर्तन क्या चीज है, भागवत नाम की चीज क्या है। भारत में तो था किंतु भारत के बाहर में ये सब चीजें नहीं थी। इसलिए इतने थोड़े समय में विश्व के करीब करीब 60-70 क्या 80-85 जगहों में सेंटर हुआ, भक्ति का केंद्र स्थापित हुआ। तरह तरह की वर्णाश्रम धर्म की रक्षा करने के लिए बहुत सी चीजें इन्होंने किया। आज मैं अपने गुरु के साथ साथ में इनको भी प्रणाम करके भागवत की कथा का हम आरंभ कर रहे हैं, जो उनका उद्देश्य था। प्रचार का दो उद्देश्य होता है, एक होता है आउटवर्डली जो विचार है, शरीर संबंधी, समाज संबंधी, देश संबंधी एक प्रकार का विचार होता है, और एक होता है जिसके लिए कृष्ण जगत में उतरे, जिस काम के लिए चैतन्य महाप्रभु जी इस जगत में आए, जिस काम के लिए मध्वाचार्य, जरामानुज, शंकर इत्यादि सब बड़े बड़े लोग आए हुए हैं, भगवान के भक्त लोग आए हैं, उसी के लिए आचार्य लोग जगत में आते हैं। हम भूल जाते हैं भगवान को, जो हम भगवान के इटर्नल सर्वेंट हैं भूल जाते हैं। ई ड्रिंक एंड मी बेरिंग, बस इसमें व्यस्त हो जाते हैं, समय नहीं मिलता है, केवल खाने पीने मौज में, धन संग्रह में, और मृत्यु को और जल्दी जल्दी बुलाने के कामों में हम फंस जाते हैं। जिससे हमारा कल्याण होगा वो तो भूल जाते हैं, और जिससे हमारा विनाश होगा उधर में हम चलने लगते हैं। इसलिए कृष्ण कभी कभी भगवान भी आते हैं, कभी कृष्ण ही राम के रूप में आते हैं, कभी कृष्ण ही वामन इत्यादि कितने रूपों में आते हैं, कभी अपने भक्तों को भेजते हैं, इस प्रकार से युग की धर्म की प्रतिष्ठा करके जाते हैं। इसलिए सनत सनंदन सनत कुमार जी ने, वो कहीं भारत में आ रहे थे, उन्होंने देखा तो उन्होंने पूछा, भारत तुम बड़े दुखी देखते हो, खिन्न लग रहे हो, तुम तो भक्ति का प्रचार विश्व में करते हो, तुम्हें तो कोई चीज की कमी नहीं है, किसी चीज की इच्छा नहीं है, और तुम जगत का कल्याण करने वाले हो, और फिर भी तुम बड़े दुखी देख रहे हो, मुख सूख रहा है, बड़े खिन्न देख रहे हो, क्या बात है। उन्होंने कहा, हां कुछ ऐसी बात है, मैं पृथ्वी तल में गया, मैं 14 लोकों में जहां इच्छा होती है वहां चला जाता हूं, विशेषकर के बैकुंठ में भगवान नारायण के पास में रहता हूं, और वहां से चारों लोकों में घूमता रहता हूं। मैं घूमते 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 भारत वर्ष में गया, वहां हरिद्वार में गया, वहीं से मैं ऋषिकेश में गया, बद्री नारायण गया, फिर वहां से दक्षिण में केरल में वहां पर गया, श्वेत बांध रामेश्वर की तरफ में गया, जगन्नाथपुरी में गया, द्वारकापुरी में गया, सब जगहों में घूमते 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 हमको ये ऐसा लगा कि पृथ्वी से धर्म का सार न जाने कहां चला गया। लोगों में पवित्रता नहीं, लोगों में सम दम तितिक्षा नहीं, लोगों में सहिष्णुता नहीं, लोगों में तपस्या का बल नहीं, लोगों में दान करने की जब प्रवृत्ति थी अब नहीं रही। पहले लोग हाथ ऐसे पसारने वाले नहीं मिलते थे, ऐसे करने वाले मिलते थे, और ऐसा करने वाला कोई नहीं मिलता, यदि है भी तो स्वार्थ के लिए, केवल हमारे भारत के लोग भी हाथ पसारने के लिए कभी अमेरिका, कभी इंग्लैंड, कभी फ्रांस, कभी जापान जा रहे हैं। बड़े बड़े जो अभी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बनते हैं वो अब केवल भिखारी ही नजर आते हैं, ऐसे देने वाले नहीं। पहले ऐसा नहीं था, पहले देने वाले ही होते, निस्वार्थ भाव दिया और चुपचाप, किसी से भी इस आंस से दिया तो इस आंस को पता नहीं लगे, ऐसे था सब। अब तो वो दान दक्षिणा परस्पर प्रीति ये सब कहीं नहीं मैंने देखा। अधिक बजाने वाले को ही साधु संत कहा जा रहा है, पाखंडी लोग भर गए हैं। भागवत की कथाएं हो रही हैं, किंतु उसको बेचा जा रहा है। बेचना समझते हैं कथाएं? देखो भागवत की कथा होगी, सब लोग कुछ न कुछ प्रणामी देंगे, पहले ये तय हो जाता है, और पाठक थाले की तरफ में देखता है कि कितने पैसे प्रणामी पड़े। यदि हुआ था तो खूब उल्लास होता है, और नहीं तो नहीं। इस तरह से कथाओं का सार चला गया, तपस्या का सार चला गया। ब्राह्मण लोग वेद भी आजकल पढ़ाते हैं तो उसके लिए पैसे ले लेते हैं, तो वेद पाठ का भी सार चला गया। पैसा ही सबसे महत्व, पैसा ही मानव भगवान हो गया, इसलिए सारा संसार बड़ा दुखी है। मैं घूमते 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 बहुत दुखी होकर के वृंदावन में आया, वहां एक अजीब तमाशा देखा। क्या देखा? वहां देखा एक युवती स्त्री है, बड़ी सुंदरी है किंतु बड़ी दुखी है, और जहां वो बैठी है कुंज के पास में दो वृद्ध जिनके केश पक गए हैं, वृद्ध हो गए हैं, वो दोनों तरफ में लेटे हुए हैं, उनको होश नहीं है और वृद्ध है, और बहुत सी सुंदरी स्त्रियां वो चारों तरफ से खड़ी होकर के उनको चामर पंखे उनको डुला रही हैं। किनको? जो स्त्री है तरुणी उसको डुला रहे हैं। मैं जब पहुंचा तो मुझको कुछ विचित्र सा लगा, मैं वहां पर पहुंच गया। जब निकट गया तो स्त्री खड़ी होकर के हाथ जोड़ दी, महात्मा जी आप बड़े पधारे, आज हमको हृदय में बड़ा कुछ सुख सा मालूम हो रहा, आनंद की अनुभूति हो रही है, मेरी इच्छा थी जी आपसे आपके दर्शन हो जाएं, आज हमारा सौभाग्य है कि आपसे दर्शन हो गया, आपको कुछ हम शांति मिली। नारद जी ने पूछा जी आप कौन हैं, कौन और इतनी दुखी कौन है, और ये दोनों आदमी बूढ़े पड़े हुए हैं, ये कौन है? मेरा नाम भक्ति है, मैं सतयुग से द्वापर तक बड़ी सुखी थी, अब कलयुग आने वाला है, मैं बड़ी दुखी हूं, मेरा जन्म दक्षिण भारत में हुआ, केरल इत्यादि के पास में, मैं वहां से कुछ बड़ी हुई तो कर्नाटक में आई, यू नो कर्नाटक, कर्नाटका, वहां पर तो वहां पर कुछ बड़ी हुई, वहां से महाराष्ट्र में आई, महाराष्ट्र माने बंबई इत्यादि, पुणे बंबई इत्यादि, वहां पर जब आई तो कहीं कहीं मैं बढ़ी, किंतु अब मेरा बढ़ना रुक गया। जो ही मैं महाराष्ट्र से आगे बढ़ी, जहां गुजरात में गई तो मैं बूढ़ी हो गई, हमारे बेटे भी बूढ़े हो गए, इनके दांत टूट गए, सफेद बाल हो गए और बड़े दुखी हो गए, मैं भी बूढ़ी हो गई, अब मैं क्या करूं, मैं बड़ी दुखी हुई। दुखी होकर के मैं सोचा जब वृंदावन चलूं, तब वृंदावन में आई, यहां आते ही यहां पर पैर धरते ही मैं तो जवान हो गई और तरुणी बन गई, बड़ी सुंदरी बन गई, मुझे बड़ी कुछ शांति मिली। किंतु हमारे ये दो बेटे हैं, एक का नाम है ज्ञान, एक का नाम है वैराग्य, ये हमारे बेटे हैं, किंतु ये बूढ़े के बूढ़े बने रहे, कुछ संचार तो हुआ प्राणों का, किंतु बोलते नहीं है। बात क्या है, भक्ति देवी दक्षिण में बड़े बड़े रामानुज, मध्वाचार्य, उसके पहले भी यमुनाचार्य, अलवर इत्यादि भक्त हो गए हैं मध्वाचार्य। यहाँ पर साधु संतों का जन्म होता है, जहाँ पर भक्ति का प्रचार होता है वहीं भक्ति का जन्म होता है। बिना साधु संघ के भक्ति नहीं होगी। भक्ति स्तु भगवत संगेन परिजायते सत्संग प्राप्यते पुंभी पूर्व जन्म सकृत। भक्ति का कैसे जन्म होता है, कोटि कोटि जन्म में कुछ सुकृति होगी। सुकृति कैसे होगी, यदि कोई सच्चा संत है उसकी आपने किसी प्रकार से पानी दे दिया, उनको आदर पूर्वक बैठाया, उनको प्रसाद के लिए कुछ दे दिया, ठाकुर जी को सिर नवा दिया, तुलसी जी की परिक्रमा हो गई, या किसी वृंदावन इत्यादि धाम में चले गए, किसी प्रकार से भागवत के कथा में बैठ गए, दो एक कथाएं कान में चली गई, इसको कहते हैं सुकृति। और इस सुकृति के बाद में जब पुष्ट हो जाती है कुछ जन्मों तक, तो हठात वैष्णवों का साधुओं का संग हो जाता है। निर्मल चरित्र, निर्मल चरित्र साधु कौन है, वह है जिसका सर्वस्व कुछ नष्ट होने पर भी उसको कोई चिंता नहीं, संसार का समस्त वैभव मिलने पर भी उनको कोई सुखी नहीं, सुख नहीं, उनको संसार की कोई रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत ही नहीं है कुछ, भगवान के चिंता में मग्न रहते हैं। सुखदेव गोस्वामी को लंगोटी की भी जरूरत नहीं, ऐसे ऐसे महापुरुष भारत वर्ष में हमारे हुए हैं, भगवान की कथाओं को जगत में दे करके और जगत को पवित्र कर देते हैं, जैसे नारद जी हैं, व्यास जी हैं, इसके बाद की परंपरा है, महाप्रभु हुए, रूप सनातन हुए और सब, उसकी कड़ी में ये स्वामी जी भी अब तक है, हमारे गुरु जी भी उसके कड़ी में है। तो इन लोगों को संसार की कोई भी आवश्यकता नहीं, क्या चीज की जरूरत है, हम हैं कौन आखिर, हु एम आई, मैं आत्मा, मैं भगवान का नित्य दास हूं, भगवान को भूल करके हमारी ये दशा है। ये महात्मा लोग भगवान कृष्ण इन जीवों पर दया करके कभी कभी अवतार लेते हैं, कभी भक्तों को भेजते हैं संसार में, इस चीज का प्रचार करो कि हमको भूल करके संसार में ये दुख पा रहे हैं, बुढ़ापा आ रहा है, मृत्यु आ रही है, जीवन में भी कोई सुखी और शांति नहीं है, बड़ी बड़ी आशाएं लेकर के हम भारत से इधर में आते हैं और यहाँ आकर के कुछ दोनों के बाद में हम अनुभव करते हैं जी क्या सुख हुआ, मृत्यु तो आई ही, बुढ़ापा आया ही, और रोग भय तो रहे ही, और प्रॉब्लम हुई, यहाँ पर भी आने के बाद में डाइवोर्शन इत्यादि, परस्पर स्त्रियों पुरुषों का वो जो प्रेम था वो प्रेम समाप्त हो जाता है, विशेष करके अर्थ के द्वारा ये सभी चीजें समस्याएं आ जाती है, उसमें अभिमान आ जाता है, इसलिए ये बतला रही हैं कि मैं चारों तरफ में दुखी थी, अब बतलाइए हमारे लड़के पड़े हुए, हमको क्या करना चाहिए, हमारे लड़के कैसे दुरुस्त होंगे, ठीक होंगे, और मुझको कब सुख प्राप्त होगा। नारद जी ने कहा ये देखो, भक्त जहां होते हैं वहां भक्ति का जन्म होता है, और वहां से आप कर्नाटक में आई तो वहां पर भी बहुत से भक्त हुए, इसलिए वृद्धि को, जहां भक्त नहीं रहेंगे भक्ति शांत हो जाएगी, कौन हरि कथा करेगा, इसलिए भक्ति समाप्त हो जाएगी। जब वहां से आए महाराष्ट्र में बंबई इत्यादि में, वहां पर धन की अधिकता है, इसलिए यहां पर थोड़े थोड़े लोग आदर करते हैं और कुछ लोग आदर नहीं करते, इसलिए यहां पर मैं थोड़ी थोड़ी बड़ी किंतु आगे नहीं बढ़ी। अब गुजरात में गई, वहां धन की बड़े लोग ढनाटे हैं, भक्ति की तरफ में नहीं देखते, इसलिए वहां पर हमारे लड़के भी ज्ञान बैराग्य भी बूढ़े हो गए और मैं भी बूढ़ी हूं। मैं नारद जी कह रहे हैं तुम बूढ़ी हो गई, और वृंदावन में भक्ति का आधार है, तुम तो तरुणी बन गई किंतु तुम्हारे लड़के तरुण नहीं बन सके, वहां पर ज्ञान और वैराग्य को कोई नहीं पूछता, वो हरिद्वार में कुछ और कुछ काशी में। इसलिए अब आपके लिए मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि आपके बच्चों को मैं जीवित ठीक करूंगा और आप भी सुखी हो, घर घर में भागवत की कथा हो और आपका आदर हो, ऐसा मैं काम करूंगा। ये कह करके मैं चला, मैं यहां आया हूं और आप लोग बड़ी कृपा की जो आप हमसे मिल गए। अब बतलाइए हमको क्या करना है, कैसे भक्ति को हम ठीक करेंगे और हमारे ज्ञान बैराग कैसे होंगे। जो भक्ति करेगा ज्ञान वैराग्य अपने आप आता है, इसलिए उनको पुत्र कहा गया है। भक्ति नहीं होगी, ज्ञान भी नहीं होगा, वैराग्य भी नहीं होगा। भक्ति के बिना जो ज्ञान होता है वो बेकार का होता है, उससे कुछ भी लाभ नहीं होता। और भक्ति के बिना जो वैराग्य होता है वो दिखाने के लिए होता है। जैसे आजकल बड़े बड़े महात्मा लोग बड़े बड़े वैराग्य करने वाले कहलाते हैं और उनके घरों में जाएंगे तो हम समझते हैं कि बड़े बड़े राजाओं का, बड़े बड़े धनी का, राष्ट्रपति का महल भी वहां पर फेल हो जाएगा, इतना वैभव वहां है। इसलिए शुद्ध भक्ति नहीं रहती, इसलिए ये उन्होंने बतलाया कि देखो एक बात करो, तुम सब कुछ जानने वाले हो नारद, तुम जगत के गुरु हो, तुम सब भी जानते हो, तभी हमारे पास में आए हो। तो मैं बतलाता हूं श्रीमद् भागवत एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें भक्ति का इतना सुंदर विचार है, जिससे भक्ति होने से अपने आप ज्ञान भी हो जाएगा, वैराग्य भी हो जाएगा। बिना भक्ति का जो वैराग्य होता है वो दिखलाने के लिए 2 दिन का होता है, और भक्ति होने पर जो वैराग्य होता है, सचमुच में भक्ति के लाभ होने से सब कुछ उसकी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं, पूर्ण काम बन जाता है। जिस समय में ये श्रीमद् भागवत पहली बार आरंभ हुआ, सुखदेव गोस्वामी ने कहा, कहने के लिए तैयार थे, उस समय देवलोक से इंद्र की अगुवानी में सब देवता लोग पधारे, हाथ में अमृत का कलश था। सुखदेव गोस्वामी को कहा, महाराज आप एक बात कीजिए, हम लोगों के पास में ये कलश में अमृत है और आपके पास में भागवत है, आप कृपा करके ये अमृत का कलश लेकर के परीक्षित महाराज को पिला दीजिए, वो सांप के काटने से भी नहीं मरेगा, वो अजर अमर हो जाएगा, और ये भागवत की कथा हमें दे दीजिए। तो वो हंसने लगे, तुम लोग भागवत के सुनने के अधिकारी नहीं हो, अमृत पान करने से कुछ दिनों के लिए आदमी तो बच जाता है, किंतु उसमें अभिमान, जैसे इंद्र को अभिमान होता है, भगवान को भी भगवान नहीं माना, उनके ऊपर में भी वर्षा और वज्र चलाए, उनको भी नहीं माना, कृष्ण को नहीं माना, देवता लोग का भी ऐसा कभी कभी हो जाता है। इसलिए वहां पर दुख कष्ट भी है, इंद्र को शाप भी लगता है, ऐसे काम करते हैं, इसलिए वे लोग अमृत के अधिकारी केवल हैं, भागवत के अधिकारी नहीं है। इससे बढ़कर के एक और अमृत है, वो मोक्ष अमृत कहलाता है। इस मोक्ष अमृत से भी प्रेम का अमृत जो है वो बहुत ऊंचा है। उस प्रेम के अमृत का ये भंडार श्रीमद् भागवत स्वयं कृष्ण रूप है, तमाल वर्णम सुहितावतारम, अपार संसार समुद्र से तुम भजामहे भागवत स्वरूप। भागवत क्या है, इनके 12 अध्याय जो स्कंद है, कृष्ण के 12 अंग हैं। इन 12 अंगों में उनका हृदय कौन है, 10th स्कंद, और 10th स्कंद में हृदय में भी पंच जो प्राण है उसके बिना हम बच नहीं सकते, वो राश पंच अध्यायी है। तो ये कृष्ण का पूर्ण स्वरूप है। कृष्ण भी जितने दयालु नहीं है उससे भी अपार संसार समुद्र से तो बड़े दयालु है। कृष्ण को दर्शन करने के लिए बड़ी बड़ी योग तपस्या और भक्ति चाहिए, भागवत सबके सामने है। सबके लिए उपलब्ध है, ऐसे ये श्रीमद् भागवत। पुल किसको कहते हैं? समुद्र सेतु। सेतु किसको कहते हैं? सेतु दो अलग अलग भागों को मिलाने वाले, जल से जो दो भाग हो गया है उनको मिलाने के लिए सेतु चाहिए। जैसे कि सेतु था सेत बांध रामेश्वर, लंका और भारत को मिलाने के लिए। यहां पर भी सेतुएं होंगे नदी के इधर उधर। एक दो भाग क्या है? एक ये जड़ जगत, जड़ ब्रह्मांड, और दूसरी तरफ में क्या है? दूसरी तरफ में गोलोक वृंदावन है धाम। बीच में क्या है? बिरजा नदी है, उसको पार नहीं करके, पार नहीं कर सकते, ये पार करके उधर में जाएंगे कारण समुद्र। कारण समुद्र माने क्या? हम क्यों इस जगत में आए, इसका कारण है बारी। वहां पर सत रज तम तीनों बराबर हैं, वहां पर प्रकृति का कोई कार्य नहीं है, वहीं से हम निकल करके इधर में आए हैं। तो उस बैकुंठ जगत को और इस जगत को मिलने के लिए, इस जगत से उस जगत में जाने के लिए ये क्या है? सेतु स्वरूप ये श्रीमद् भागवत है। एक है भागवत, दूसरा होता है भागवत ही उसका नाम, किंतु होता है वैष्णव जो कीर्तन करते हैं। संसार में कीर्तन ही एक है, हरे नाम हरे नाम हरे नाम अव केवल कलौ नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिरन्यथा। इतने बड़े दयालु हैं जिसकी महिमा इस श्रीमद् भागवत में बतलाई गई है नाम की। एतत् निर्वद्यमानानां इच्छताम अकुतो भयम जोगी नाम निर्णतम हरे नामान। यदि संसार में कोई चीज की आवश्यकता हो, जिसको कोई चीज की आवश्यकता नहीं हो, जो ज्ञान और मुक्ति भी चाहते हैं, जो भगवान की भक्ति भी चाहते हैं, कोई कुछ भी नहीं चाहते हैं, उन सब के लिए भगवान का नाम कीर्तन ही नाम कीर्तन ही नाम कीर्तन ही एकमात्र सुखी करने वाला है। भगवान के नाम संकीर्तन के बिना जगत में कोई सुखी और शांति नहीं हो सकता है, ये एकदम दृढ़ समझो। यदि सुखी के होना है जगत में तो नाम का आश्रय किया। आप तप करेंगे, तप करने की शक्ति नहीं, पांच दिन निराहार रहिए तो सुखदेव गोस्वामी, अरे ये परीक्षित महाराज तो सात दिन नहीं खाया, रहिए तो एक दिन बिना पानी का बिना हवा का। ध्रुव जी ने क्या किया? कितने छह महीना ना, छह महीने में अंतिम महीने में उन्होंने पानी नहीं लिया हवा नहीं लिया। ऐसा तप होगा कलयुग में? संभव नहीं। ध्यान लगाएंगे पचासों तरफ का प्रॉब्लम। सारा राष्ट्र आजकल देखिए ना, भारत ने बम बनाया और इधर पाकिस्तान ने बम बनाया, इधर में अमेरिका की नींद हराम हो गई, इधर में इंग्लैंड अमेरिका सभी लोग चिंता कर रहे हैं, और वहां के लोग आराम से बैठे हैं ना, वो लोग भी बड़ी समस्या है। कल यदि बम फटाफट फटना आरंभ हो गया तो फिर ध्वंस के कारागार पर सब बैठे हैं, पता नहीं इसका फल क्या होगा। तो इसलिए ध्यान नहीं हो सकता है। अर्चन करेंगे ठाकुर जी का नहीं करेंगे? कुछ दिनों के बाद में अर्चन इत्यादि व्यवस्थाएं समाप्त हो जाएंगी। ऐसे लोग हो जाएंगे जो ठाकुर जी के घर में, अभी तो इतने आदमी को मैं दे करके बहुत प्रसन्न हो रहा हूं, सुनने के लिए आए हैं ठाकुर जी का दर। कुछ दिनों के बाद में ठाकुर का पुजारी भी नहीं रहेगा। अभी पुजारी को आपको पैसा देना होता होगा, पहले पुजारी ऐसे नहीं होते थे, पैसा नहीं लेते थे। हम लोग पैसा नहीं पूजा के लिए लेते हैं, अपने मंदिर में जो रखते हैं, किंतु यहां पर पैसा देने, पुजारी को पैसा नहीं देने से पूजा नहीं करेगा, नहीं तो भारतवर्ष से ले आ करके उनको खाना पीना खर्चा वर्चा सब देना पड़ेगा। कुछ दिनों के बाद में वो उसमें भी नहीं मिलेंगे, और मिलेंगे भी तो पैसा पहले संभालने अलग, ठाकुर जी को एक केला दे देंगे। जैसे पिलवान होता है ना हाथी का भारतवर्ष में, पिलवान सब हाथी को खाने का माल सब अपने पॉकेट में रख लेता है और हाथी को कैसे पत्ता टत्ता दे देता है, हाथी बिगड़ करके पिलवान को भी खत्म कर देता है। बड़ा रिवेंज लेने वाला क्रोधी जानवर होता है और समझता है। तो धीरे 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 अर्चन भी समाप्त होगा, इसमें भी पैसे लगते हैं, मंदिर बनाने में पैसा लगा होगा। अभी तो सुनते हैं ये कहीं कहीं 70 करोड़ या कितने रुपए का भी मंदिर का प्लान बन रहा है, कितनी कितनी जगहों में। और फिर उसमें चिड़िया भी झांकने के लिए फिर नहीं जाएंगी, बहुत कम लोग आएंगे। इसलिए जिसमें एक पैसे का खर्च नहीं है, क्या है ये? हरिनाम संकीर्तन। घर में बैठे बैठे चलते फिरते उठते बैठते रात में दिन में स्नान करके बिना स्नान किए भोजन करके, अरे सो रहे हैं बेड में तो भी कर। याद तक कि और कोई समय नहीं मिल रहा है तो टट्टी करते समय भी पैखाना करते हुए भी हरे कृष्ण कर लो, कोई भी बात नहीं। पवित्रता पवित्रता का नियम टियम कुछ भी बात नहीं है। और यदि नियम पूर्वक करे तो साथ ही साथ उसका फल मिलेगा। इसलिए हरिनाम संकीर्तन से जीवों के कल्याण के लिए कलयुग में और कोई साधन नहीं है। बस उन्होंने कहा जे भागवत आरंभ कराओ, और फिर कहां होगा? हरिद्वार में आनंद घाट एक है, हम लोगों का वहां पर आश्रम है। वहीं पर चारों तरफ से देवता लोग भी, दूसरे दूसरे जितने भक्त थे, देवता ऋषि जितने थे, मनुष्य लोग दलों के दलों में 60,000 के 88,000 ऋषि लोग भी वहां पर पहुंच गए। और ये सनत सनंदन सनत कुमार ये चारों भगवत की कथा है कहलाने लगे। नारद जी बैठकर, इतने में भक्ति देवी वहां पर अपने बच्चों के साथ में आई और जब भागवत की महिमा सुना उन्होंने, और साथ ही साथ में उनके लड़के तरुण बन गए, परम खुशी हो गई। आज हमारा कल्याण हो, मैं कहां बैठूं? सनत कुमारों ने उत्तर दिया, तुम भक्तों के हृदय में बैठो, तुमको कोई देख नहीं सकेगा सहजी, और तुम्हारा कोई भी अनिष्ट नहीं करेगा। बस भक्तों के हृदय में उजा करके बैठ गए, भक्त लोग श्रद्धा पूर्वक भागवत की कथा सुनने लगे और इस प्रकार से भागवत की कथा चलने लगी। अब जो मैंने प्रणाम श्लोक किया था वो श्लोक क्या? यंग प्रबदम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आयुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो भिनेदु तं सर्वभूत हृदयम। गुरु जी को प्रणाम करके सूत्र गोस्वामी कहने लगे, देखो अच्छा बीच में थोड़ा सा कर्तन कर। ये कृष्ण के और श्रीमती राधिका जी के बड़े प्रिय शुक हैं। शुक जो पक्षी होती है, जब कृष्ण की लीला अभी चल रही थी, कृष्ण इस जगत में थे, एक समय में राधा जी श्रीमती राधिका जी जो उनकी शक्ति स्वरूप शक्ति है, मूर्तिमान उनका विग्रह ये राधिका जी है, उनकी शक्ति का वो बरसाने में अपने सुख को अपने हाथों में रखकर और अनार का दाना उसे खिला रही है, कभी कभी चावल और दूध लेकर के उसे खिला रही है और कह रही है, बोलो तो कृष्ण कृष्ण कृष्ण, ठीक राधा जी के ही स्वर में, वैसे ही मधुर स्वरूप में जैसे राधा जी की आवाज है, ठीक उसी स्वर में कृष्ण 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 वो भी करने लगा। राधा जी सुनकर के बड़ी प्रसन्न हो गई, बीच बीच में कहती हैं और वो कहता है, ये सुनकर के प्रसन्न होती है। इतने में वो सुख पक्षी उनके हाथों से उड़ गया और उड़ करके देखा जिसे बड़े सुंदर तमाल के पेड़ नंदगांव में, वहीं से थोड़ी 1.5 मील की दूरी पर 2 मील की है, वहां पर पहुंच गया। बल्कि दोनों का बॉर्डर एक में मिलता है, इसलिए इस पार से उस पार में जाना था, बस वहां चला गया एक तमाल वृक्ष पर बैठकर, और वो वहीं पर बैठ गया और कृष्णा और मधुमंगल जी वहीं पर वहीं खेल रहे हैं। सुख पक्षी वहीं पर तमाल वृक्ष पर बैठ करके कह रहा है, कृष्णा कृष्णा बहुत मधुर स्वर। कृष्ण देखा ये इतना मधुर स्वर कहां से आ रहा है, ये राधा जी तो नहीं है। तो बड़ी ध्यान से सुनने लगे। इतने में फिर जब बोला वो राध कृष्ण कृष्ण, तो देखा रही ये तो बड़ा सुंदर सा सुख है, ये तो हमारा नाम इतना सुंदर बोलता है। उन्होंने उसको थोड़ा सा पुचकार करके बुलाया और वो ठीक आकर के कृष्ण के कंधे पर बैठ गया। कृष्ण ने अपने हाथों में ले लिया, बोले जी तुम क्या बोल रहे थे जरा बोलो तो। कृष्ण कृष्ण कृष्ण, थोड़ी देर के बाद में उसने एक श्लोक बोला। वो श्लोक क्या है, मैं पक्षी जाति का चंचल स्वभाव का, मैं श्रीमती जी के हाथों पर बैठ करके बड़े आराम से अनार का दाना चूंग रहा था, और मैं इस दोष के कारण ये मैं बहुत चंचल हूं, उनके हाथों से उड़ गया और यहां पर आ गया। मुझे धिक्कार है, मुझे धिक्कार है, मुझे धिक्कार है। ऐसी करुण स्वर से वो बोला जैसे कृष्ण का हृदय भी पिघल गया। उन्होंने बड़ी हाथ लेकर के और मधुमंगल से अनार का दाना या उसके खाने के लिए कुछ मंगाया, उसको दे करके अपने पास में रखा। इतने में दो छोटी छोटी किशोरी गोपियां वहां पर उपस्थित हुई। अरे ये तो हमारी प्यारी जी का सुख है, इसे दे दो, नहीं तो वो तो जीवित नहीं रह सकती इसके बिना। यदि तो उनका सुख है तो तुम उन्हें बुला लो, मैं नहीं देता, तुम बुला लो, तुम्हारे पास में चला जा ले जाओ। तो इस जगत में पशु पक्षी प्राणी या कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जो आपके पास आकर के फिर लौट जाए ऐसे। बस एक ही व्यक्ति है जो इसको लौटा सकता है, हम लोग नहीं। आप कृपा करके इसके स्वयं दे दीजिए, ये मैं नहीं देता, तुम बुला लो और चला जाए तो मैं छोड़ दूंगा। नहीं दिया कृष्ण ने, कृष्ण उन लोगों के पास में नहीं गया, जसोदा मैया के पास में गई। जसोदा मैया से रोने लगी, ये हमारी प्यारी जी का सुख है, इनसे दिलवा दीजिए, ये ऐसे नहीं देगा। अच्छा ठहर जाओ, तुम लोग यहीं पर बैठो, मैं आती हूँ। ये कह करके जहाँ कृष्ण और वो मधुमंगल जी उस सुख से क्रीड़ा कर रहे थे वहां पर पहुंच गई और झपट्टा मार करके उसे पकड़ लिया। सब समय बच्चों के साथ में, पशु पक्षियों के साथ में, जानवरों के साथ में खेलता है। चलो अभी घर में स्नान कराएंगे। ये पकड़ करके सुख एक हाथ में ले लिया, उसको पकड़ लिया और कहा दासियों को जैसे स्नान स्नान कराओ, और उनको वो पक्षी दे दिया लेकर। कृष्ण भगवान होने पर भी जसोदा मैया इतना लाड़ प्यार करती हैं, उन्हें शासन करती हैं, कभी कान पकड़ लेती हैं, कभी कुछ करती हैं, और कृष्ण रोने लगते हैं, इतना उनका प्रेम है। अब यही सुख इतना प्यारा है इन दोनों का, कृष्ण के लीला चरित्र को सबको जानने वाला है, सब लीलाओं को दर्शन करने वाला है। जब कृष्ण की लीला यहां से जगत से अंतर ध्यान हो गई, गोलोक वृंदावन में चली गई, तो कृष्ण का राधा जी का आदेश हुआ कि तुम इस जगत में रह करके यहीं पर प्रचार करना, हम लोग जा रहे हैं, ये जगत को सब तुम्हारे ऊपर में छोड़ रहे हैं, इसलिए भक्ति का प्रचार होना चाहिए, तुम्हारे द्वारा जगत का कल्याण होगा, इसलिए तुम रहो। वो सुख बहुत दुखी हो गया, ये लोग तो चले गए, अब चारों तरफ में घूम करके देख रहा जी कहां भगवान का नाम संकीर्तन हो रहा है, कहां भगवान की भक्ति की कथा हो रही है। पहुंचते पहुंचते कैलाश में पहुंचा, वहां शंकर जी पार्वती जी को भगवान की कथा सुना रहे हैं, यही भागवत। अब बड़े प्रेम से सुनने लगा। पहले अध्याय में जब आरंभ हुई कुछ तत्व की बातें आई, द्वितीय अध्याय में और सृष्टि चक्र इत्यादि का वर्णन होने लग गया, तो स्त्री का मस्तिष्क कुछ समझ में आया, कुछ नहीं आया, बस सो गई। पहले तो हूं कर रही थी किंतु सो गई। जब तत्व की बातें आती हैं तो आदमी सो जाते हैं, जब कुछ कहानी जैसी आती है तो लोग उसमें, आप लोग सब समय बड़े शांति के साथ में ठीक से ऐसे ऐसे मत बूढ़े जैसे मत बैठेंगे, शांति के साथ में हम करके बैठेंगे। इसका एक एक कण अमृत है। यदि इन कथाओं में से एक भी कथा आपके कान में जाए और युक्ति तर्क की कसौटी पर आप कसेंगे, जहां पर संदेह होगा हमसे पूछ लेंगे। हम लोग वो ब्राह्मण जैसे भागवत सुनाते हैं वो हम लोग वैसे नहीं, हम लोग उसके तत्व को देने आए हैं। एक पैसे की भी लालसा नहीं है जो आप लोग चढ़ाएंगे नहीं चढ़ाएंगे, हम जो देने के लिए आए हैं इस चीज को ग्रहण करेंगे। बहुत दूर से आया हूं पैसे के लिए नहीं, हम पैसा एकदम नहीं, आप लोगों का हृदय चाहता हूं निर्मल। इन कथाओं में से थोड़ा सा भी बैठ गए आपके हृदय में, आपका जीवन परम धन्य हो जाएगा। यदि आप लोग हमसे लेंगे आपका जीवन सुखी हो। आप लोगों के पास में ऐसी कोई चीज नहीं है जो हमको दे सके, उसको तो हम पहले हम लोग छोड़ करके आए हैं, इस चीज को समझेंगे। इसलिए जैसे सुखदेव गोस्वामी परीक्षित जी को सुनाया और वहां पर इतने लाखों आदमी थे, एक पैसा लिया न क्या किया, जैसे नंगे आए थे सबको सुना करके भागवत की कथा दे करके चले गए, ऐसे ही समझेंगे। कुछ लेने की चेष्टा करेंगे तो वहां पर पार्वती जी तो सो गईं और ये सुख पक्षी पेड़ की डाल से करे हूं हूं, आगे कहिए बहुत सुंदर बहुत सुंदर, ऐसे जैसे पार्वती जी कह रही थी उन्हीं के स्वर में स्वर मिला करके कहने लगे। शंकर जी सोच रहे हैं कि ये बड़ी कथा बड़ी प्रेम के साथ में पार्वती जी सुन रही हैं। कथा में वो रंगे हुए थे, कभी आंख बंद कर देते कभी कुछ, इसलिए वो देख नहीं सके ये कौन हूं कर रहा है। थोड़ी देर के बाद में जब एकादश स्कंद जब पहुंच गया, वो समाप्त होने की कथा आई, फिर ज्ञान तत्व आया, तो पार्वती जी उठ गईं, बोली जी हमने तो कुछ सुना नहीं, मैंने तो वही सुना था पहले सृष्टि तत्व, इसके बाद में क्या हुआ, तो कौन सुना। अरे भागवत की कथा ऐसी है जो सुन करके आदमी अजर अमर हो जाता है, इससे वैदिक उसको प्रेम हो जाता है, और तुमने सुना नहीं तो कोई अयोग्य व्यक्ति इसको सुन लिया, कौन सुना कौन हुंकारी भर रहा था। चारों तरफ देखने लगे, देखते देखते देखा पेड़ों की आड़ पर डाली पर बैठा हुआ पत्तों से छिपा हुआ केवल मुख उसका लाल दिखाई दे रहा है ठोर, और बस अरे यही तो है, त्रिशूल लिया और उसके पीछे दौड़े। अनाधिकारी व्यक्ति को भागवत और गीता नहीं सुनना चाहिए, जो इंद्रियों का संयम नहीं है जिन लोगों को, झूठ बोलते हैं ने? पैसे के प्रति अत्यंत आसक्त हैं, विषयी हैं, झूठ बोलने वाले हैं, व्यभिचारी हैं, उनको गीता मत सुनाओ, खबरदार भागवत मत सुनाओ। जो कि प्रेम के लिए सुनना चाहते हैं, मैं कौन हूं किस लिए जगत में आया, कैसे हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, हम कैसे सुखी हो, ऐसे श्रद्धालु व्यक्ति को, तपस्वी व्यक्ति को, निर्लोभ व्यक्ति को भागवत और गीता को सुनाओ, नहीं तो वो पालन नहीं करेगा, दो दिन के बाद में छोड़ देगा। इसलिए ये किसे सुन लिया ये सुख पक्षी, बस मारने के लिए दौड़े। और उस समय कैलाश पर्वत से बद्री नारायण केवल 4-5 मील का अंतर है, किंतु पहाड़ की चोटियां इतनी ऊंची हैं जो उनको कम से कम तो 300 माइल घूम करके जाना पड़ेगा। पक्षी तो उड़ करके चला गया झट, और शंकर जी भी वैसे ही उसके पीछे पीछे चले। जब उस आश्रम में पहुंचे तो व्यास जी का आश्रम, वहां पर भागवत की कथा व्यास जी अपनी पत्नी कुछ को कह रहे हैं, वही निगम कल्प तरोर्गलित अंग फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिवत भागवत मरसमालयम मुहुरहो रसिका। भागवत की कथा कौन सुनेगा, वेदों का ये सार है क्या, श्रीमद् भागवत कैसा सार, गीता को बतलाया ना, गीता क्या चीज है, सर्व उपनिषदो गाओ दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो सुधुर भक्ता
पार्थ
भक्ता गीता मितो महत। ये दुग्ध है उपनिषद, सारे उपनिषद। और बछड़ा कौन है? पार्थ। और दुहने वाला कौन है? कृष्ण स्वयं है। और अमृत क्या है? वही दूध जो दूह रहे हैं, अमृत। गीता का जो कथामृत में ये अमृत है। तो सर्व उपनिषद का। और भागवत क्या है? उपनिषद वेद का एक अंग है केवल, बहुत में बहुत विशाल है। और श्रीमद् भागवत है समस्त वेद रूपी कल्प वृक्ष है, उसका एक अंग उपनिषद, उसका एक सार अंश गीता। और यह है वेदों समस्त वेद रूपी कल्प वृक्ष का। कल्प वृक्ष किसको कहते हैं? जो मांगो सो ही दे दे। क्या दे? एक उपमा के लिए बतलाता हूं। कोई जंगल में कोई एक शिकार खेलने के लिए व्यक्ति गया, शाम हो गई, भूख लगी, एक पेड़ के नीचे गया, बहुत थका हुआ प्यासा, जरा पानी कहीं से मिल जाता। इतने में देखा जैसे कोई पानी लेकर के उपस्थित हुआ, पानी पी लिया। भाई जरा कहीं भूख मिट जाती, कुछ खाने के लिए कुछ मालपुए और ये सब मिल जाते, राबड़ी मलाई। इतने में देखा जरा रसगुल्ला मलाई सब जो कुछ है सब आ गया थाली, वाह खा लिया। एक पलंग सुंदर होता तो मैं सो जाता, घोड़े को ही पर बांध दिया। देखा जे सचमुच में एक पलंग आ गया। थोड़ी देर में कहा जब सो गया, आध घंटे के बाद में उसकी नींद खुली। अरे ये तो बाघ गर्जन कर रहा है, कहीं आ ना जाए, इतने में बाघ आ गया। अरे कहीं हमको खा ना जाए, इतने में हड़प करके उसे खा गया। ये तो कल्प वृक्ष जगत का है। और श्रीमद् भागवत कल्प वृक्ष कैसे है? विषय मांगने पर भी अमृत देने वाले हैं, ऐसे ये भगवत। समस्त वेदों का सार क्या है? जैसे कि एक पेड़ है, पेड़ में सर्वत्र रस है, किंतु उसकी जड़ को चूसो तो उसमें से मिठापन आएगा कि नहीं आएगा? उसमें भी रस है। अच्छा वही रस डालियों में गया, पत्तों में गया, पत्तों को चूसिए तो नहीं आएगा, फिर उससे फल बना। कच्चा है तो उसको चूसो तो मिठापन नहीं आएगा। जब वही फल पक गया और उसकी सुगंध से कोयल और सूक पक्षी आकर के उस पर बैठ करके थोड़ा सा ठुकराया, झट गिर गया, है ना, बहुत मीठा। उस आम में जो मिठास है पके हुए, वो उसकी जड़ में नहीं है। तो ये वेद रूपी जितने वृक्ष है ये सब 1008 उसके उपनिषद इत्यादि हैं। उसमें कर्म कांड है, उसमें ज्ञान कांड है, उसमें यज्ञ करने की ये सब बातें हैं, होता हवन इत्यादि बहुत सी बातें हैं वेद में। तो इसमें रस तो है, किंतु वेदों में वो रस नहीं है। वेद का एकदम पका हुआ फल जो है मीठा, सुख ने स्पर्श कर दिया है, वो मीठा फल क्या है? ये श्रीमद् भागवत है। इसलिए वेद में वो फल नहीं, रस नहीं है जो श्रीमद् भागवत में है। यही सब कथा कह रहे थे इतने में। इसलिए हे भाव, हे रसिक, यदि नित्य काल के लिए सुख चाहते हैं तो भागवत का आस्वादन कीजिए। मौर हो रसिका भोग भाव का। सुनते सुनते इतने में वो सुख आया, देखा जे इनकी पत्नी मुख को ऐसे किए हुए बड़े आश्चर्य से सुन रही थी भागवत की कथा, इतनी सुंदर। और इतने में सुख पक्षी उनके मुख में घुस गया। कौन? वही राधा और कृष्ण वाला सुख घुस गया। और कितने दिन तक नहीं निकला? कोई कहते हैं 12 वर्ष, कोई कहते हैं 16 वर्ष तक नहीं निकला उनके पेट में रह करके। और वही सब कथाएं, भागवत की कथाएं सुन रहा था। जब 16 वर्ष का हो गया, सुखदेव गोस्वामी के पिता व्यास जी बोले, अरे भाई कौन हो आप? कोई भी हो, अपनी मैया को कष्ट मत दो, जरा निकलता हो। उन्होंने भीतर से आवाज दिया, मैं इस कलयुग में नहीं निकलूंगा, माया में नहीं आऊंगा। माया माने क्या? माया, जो मां माने नहीं, जो नहीं है, अतत मैं शरीर नहीं है उसको मैं समझ लेना, ये संसार अपना नहीं है, उसको अपना समझ करके उसमें आसक्त होना, इसी का नाम आसक्ति का नाम माया है। और भगवान की एक शक्ति का नाम है माया, जो कि इन सब की सृष्टि करते हैं, जीव के स्वरूप को ढक करके ऐसा कराती है। किसको? जो जीव भगवान को भूल जाता है। क्यों भूल जाता है? भगवान ने उसको इसके लिए स्वतंत्रता दी रखी है, इसलिए भूल जाता है। इसलिए जो जीव भगवान का स्मरण करता है, फिर अपनी असल अवस्था में पहुंच करके ऐसे स्थान में पहुंच जाता है, जदगत्वा न निवर्तन्ते तद् धाम परमम्, वहां से फिर नहीं लौटना होता। इसलिए जीव वहां से नहीं आया है, नहीं तो वहां से गिरेगा कैसे? कभी नहीं, यह बात गलत है जो वहां से जीव लौट करके आया। हाँ, कृष्ण और उनके प्यारे जीव जगत का उद्धार करने के लिए कुछ समय के लिए आते हैं, यह अलग बात है, किंतु वहां से किसी का पतन हुआ आज तक ऐसा कोई भी इतिहास नहीं है। वेदों में, उपनिषदों में, गीता में कहीं भी इसका उल्लेख नहीं है। जे जीव वहां से जब गिर जाएगा, इतनी भजन करने के बाद में, लाखों वर्षों के बाद में जो जीव जिस गति को पाता है, वहां से फिर गिर कैसे जाएगा? यह संभव पर नहीं, यह स्वर्ग नहीं है ना? इसलिए वहां से आने का कोई प्रश्न नहीं, बल्कि वहां से रसिक भावुक तत्त्वज्ञ व्यक्ति, मुक्त लोग, नारद जी जैसे लोग, ये सब आते हैं, जगत का कल्याण करके चले जाते हैं। इसलिए ये धारणा हो जीव वहां से आया है, ये गलत है। किंतु उसमें पोटेंसी है, किस चीज की? उसके स्वरूप में किस चीज की पोटेंसी? भक्ति की पोटेंसी, प्रेम की पोटेंसी है। उसका बड़ा सुंदर एक रूप है, नहीं तो इसमें आबद्ध कैसे होगा? पंजरे में सुख बंद है, तो सुख का कोई रूप ही नहीं है, हवा है तो उस पंजरे में बंद कैसे होगा? इसलिए यह बात गलत है। इसलिए सुख उसके सुख ने कहा कि मैं माया में नहीं आऊंगा, अर्थात आसक्ति में नहीं आऊंगा, नहीं तो जन्म मरण के चक्कर में गिरना पड़ेगा। उन्होंने कहा अच्छा मैं माया हटा देता हूं। उन्होंने कहा जी आप पर विश्वास नहीं, आप कौन है? व्यास मैं हूं। कृष्ण यदि स्वयं आकर के कहें, कौन कृष्ण? एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु, राम निशिंग इत्यादि ये भी भगवत तत्व हैं। एक ही चांद के बहुत सी कलाएं जैसे हैं, अलग अलग नहीं है, किंतु कृष्ण ही स्वयं भगवान है। इनको कभी कभी ब्रह्म भी, परमात्मा भी, भगवान भी कहते हैं। तत्व विदस तत्तम जज ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानीति शब्द थे। किंतु भक्ति वासुदेवे, भगवान कौन? स्वयं कृष्ण। इसलिए ब्रह्म और परमात्मा इनके अंश और कला हैं, इनके अंग की प्रभा को ब्रह्म कहते हैं, अंग की ज्योति को जो निराकार दिखती है और जिसमें अंगुष्ठ परिमाण यहां पर आकार हमारे साक्षी हैं, हमारे कर्मों के नियंता हैं, ये क्षीरोदशाई विष्णु परमात्मा है। और इनके भी मूल कौन है? ये भगवान। उन भगवानों में भी सभी अवतार है, एक है, किंतु कृष्णस्तु भगवान। वो कृष्ण यदि आकर के कह दें तो मैं मान जाऊंगा, मैं आ जाऊंगा। इतमें व्यास जी ने भगवान को पुकारा, कृष्ण वहां पर उपस्थित हुए। अरे बच्चे तुम कौन हो? जल्दी से निकल के नहीं रहा, मैं माया में नहीं आऊंगा। आप कौन बोल रहे हैं? मैं स्वयं कृष्ण हूँ। ओ, आपके लिए प्रणाम है, आप जगत गुरु हैं, कहिए क्या आदेश है? तो अपनी मैया के पेट से निकल आओ, साथ ही साथ में। उन्होंने कहा जिससे एक तलवार के ऊपर में सरसों गिराने से जितने देर तक ठहरता है उतने देर के लिए माया को हटा रहा हूं, उतने देर में जल्दी से निकलो। और साथ ही साथ में 16 वर्ष के बच्चे जैसे निकले। माता जी से और पुत्र का जो संपर्क होता है, कोई जाल जैसा कुछ रहता है, वो लगा रहा, उसको ले करके ही भगे। नाल जिसको कहते हैं, नाल को लेकर के भगे। उनका कोई अभिषेक नहीं हुआ, संस्कार नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, ब्राह्मणों ने उनको पवित्र नहीं किया और ऐसी स्थिति में वो भगे। पीछे से व्यास जी जा रहे हैं, पुत्र पुत्र और प्रतिध्वनि हो रही है, क्या कौन किसका पुत्र? ये तो मोह है, कौन किसका पिता, कौन किसका पति, कौन किसका पति, कौन किसका पति, कौन किसकी पत्नी, ये सब मोह एव ही कारणम, एकमात्र पिता भगवान है और हम उनको भूल करके इस जगत में आकर के नए नए सब संबंध लगा रहे हैं और उसमें आसक्त हो रहे हैं। यदि किसी कारण से यदि भगवान की भक्तों की यदि संग हुआ, फिर अपने स्वरूप को जान करके हम नित्य सुखी हो सकते हैं उनको पा करके। थोड़ी देर के जाने के बाद में एक सुंदर सरोवर आया, सुंदर सरोवर, सरोवर बहुत पानी निर्मल, कमल के फूल खिल रहे हैं और उसमें कुछ देवांगनाएं अश्वराएं स्नान कर रही हैं, नंगी स्नान कर रही, वहां पर कोई आदमी जा नहीं सकता तो वो स्नान कर रही हैं। आगे आगे सुखदेव गोस्वामी जी चले जा रहे हैं और पीछे पीछे बूढ़े जा रहे हैं, व्यास जी एकदम बूढ़े, दाढ़ी पकी हुई, सब केश पके हुए हैं, जा रहे हैं। इन स्त्रियों ने, रमणियों ने इनको देख करके, सुखदेव को देख करके तो उनको कोई लज्जा इत्यादि नहीं, किंतु जब व्यास जी को देखा झट सरोवर से निकल करके पड़े कपड़े पहन करके और हाथ जोड़ करके सामने खड़ी हो गई। व्यास जी ने पूछा, मेरी पुत्रियों के पुत्रियों के पुत्रियों, माने हमारा यदि लड़का का लड़का का लड़का का लड़की जैसे तुम हो, और हमारे लिए तो तुम लोग कपड़े, तुमको लज्जा आई और कपड़े पहन करके यहाँ आ गई, और हमारा बेटा 16 वर्ष का जा रहा है और उसे तुम लोगों को लज्जा नहीं, वो भी नंगा जा रहा था। तो उन लोगों ने उत्तर दिया, आपके लड़के ने तो पूछा नहीं हमसे, आप पूछ रहे हैं, वो तो हमको एक वृक्ष समझ करके या लकड़ी सूखी पहुंच करके एक पत्थर का टुकड़ा समझ करके वो तो चला गया, हमारे तरफ में दृष्टि भी नहीं दिया, आप पूछ क्यों रहे हैं, आप तो बूढ़े हैं, आपको स्त्री पुरुष का भेद शायद है, उसको तो स्त्री पुरुष का भेद भी नहीं। ऐसे ज्ञानी थोड़े दिन के बाद में व्यास जी तो लौट आए, इसके बाद में कुछ बहेलिए जा रहे थे जंगल में, सुखदेव गोस्वामी व्यास जी ने सोचा जी हमारे पुत्र को ये लाए तो उसको जो भागवत की रचना हमने की है मैं सुनाऊंगा, जगत में ऐसा कोई अधिकारी नहीं है जो इसको सुने, ऐसा वैराग्यवान ज्ञानी लोग तपस्वी लोग जन्म से ही मुक्त है, इसलिए बहेलियों को एक मंत्र सिखलाया जे जाकर के इसी का कीर्तन करना, आपके जाल में बहुत से पक्षी जिसको चाहेगा वही आ जाएगा और बाहर सुखी तुम हो जाएगा। उन्होंने उनको कागज पर लिख करके या ऐसे ही उस समय बड़ी स्मृति होती थी सुना दिया, वो सुनाया श्लोक श्रीमद् भागवत का, कृष्ण का, कृष्ण के सौंदर्य की महिमा, उनका रूप, बरहा पीड़म नटवर बपु कर्ण यो कर्ण क्यारम बृहद बाषा कनक कपिशम वैजयंती चमालम रंध्राण वेणु रदर सुधया पूरयन गोप बिंदे बिंदारंडम शबद रमणम प्राविशत गिर्द गिर्दे। रूप का वर्णन क्या है श्रीमद् भागवत का, ये ऐसा सुंदर रूप है जिसको सुन करके वो पक्षी सुखदेव गोस्वामी भी एकदम आ गए, सभी बहुत से जाल में पक्षी पड़े और ये सुखदेव गोस्वामी जो थे 16 वर्ष के, भाई ये कहां से श्लोक तुमने सुना, किसने सुनाया, तो हमारे गुरुजी ने, जाकर के पूछना जिनका इतना सुंदर रूप है कैसा, बरहा पीड़म